जोरवे ताम्रपाषाणिक संस्कृति महाराष्ट्र में स्थायी ग्राम्य जीवन का आरंभ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के साथ होता है। महाराष्ट्र में विदर्भ के कुछ हिस्सों तथा कोंकण को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग से मालवा ताम्राश्म संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तथापि जोरवे की ताम्रपाषाणिक संस्कृति महाराष्ट्र की विशिष्ट संस्कृति प्रतीत होती है। जोरवे संस्कृति के विषय में जानकारी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित जोरवे नामक पुरास्थल के उत्खनन से सर्वप्रथम हुई है, इसलिए इसको यह नाम दिया गया है। इस पुरास्थल पर एक ही संस्कृति के पुरावशेष उपलब्ध हुए थे, अतएव यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि अन्य संस्कृतियों के संदर्भ में जोरवे की क्या स्थिति रही होगी। नासिक के उत्खनन से जोरवे संस्कृति के पुरावशेष आरंभिक ऐतिहासिक काल के पुरावशेषों के नीचे मिले थे, जिसे यह पता चला कि इस क्षेत्र में जोरवे संस्कृति 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की आरंभिक ऐतिहासिक युगीन संस्कृति से पहले विकसित हुई थी। जोरवे तथा नासिक इन दोनों पुरास्थलों पर सीमित पृष्ठ संख्या 472 पैमाने पर उत्खनन होने के कारण इस संस्कृति के विभिन्न पक्षों के विषय में कोई उल्लेखनीय जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी थी। 20वीं शताब्दी के विगत कतिपय दशकों में महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के विषय में जो अन्वेषण एवं उत्खनन हुए हैं, उनसे जोरवे संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर समुचित प्रकाश पड़ा है। जोरवे संस्कृति से संबंधित सबसे अधिक पुरास्थल ताप्ती नदी की घाटी में उसकी सहायक नदियों के तटों पर स्थित है। इसके पश्चात संख्या की दृष्टि से जोरवे संस्कृति के पुरास्थल गोदावरी की घाटी में स्थित है। भीमा नदी की घाटी में अत्यल्प संख्या में यत्र तत्र जोरवे संस्कृति के कतिपय गिने चुने पुरास्थल विद्यमान हैं। तापी, गोदावरी तथा भीमा आदि बड़ी नदियों की अपेक्षा इनकी छोटी छोटी सहायक सरिताओं मंजरा, कान, बरई, गोमय, अरुणावती, प्रवरा, गिरना, घोड़, चोड़, बहालुंगी आदि के किनारों पर अधिकांश पुरास्थल स्थित हैं। जोरवे संस्कृति से संबंधित अधिकांश पुरास्थल महाराष्ट्र की काली मिट्टी के ऊपर स्थित दिखलाई पड़ते हैं। इस संस्कृति के अनेक पुरास्थलों का अभी तक उत्खनन हो चुका है। इनमें से प्रकाश, सावलदा तथा कौठे धूले जिले में और बहाल एवं टेकवाड़ा जलगांव जिले में स्थित है। तुलजापुर गढ़ी अमरावती जिले में, दायमाबाद, निवाचा, नासिक, जोरवे, सोनगांव और अपेगांव अहमदनगर जिले में तथा इनाम गांव चंदौली एवं वाड़की पूरे जनपद में पड़ते हैं। अधिकांश पुरास्थलों का आकार छोटा है, 1 हेक्टेयर से लेकर 2-3 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल मिलता है। कतिपय पुरास्थल ऐसे हैं जिनका विस्तार 9-10 हेक्टेयर तक मिलता है। तापी एवं गोमय के संगम पर स्थित प्रकाश का विस्तार लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में है। तापी नदी की घाटी में उसकी सहायक गिरना के तट पर स्थित बहाल के एक अन्य विस्तृत क्षेत्रफल वाला पुरास्थल है, जिसका विस्तार लगभग 15 हेक्टेयर में है। मृद्भान परंपराएं। जोरवे संस्कृति में कई प्रकार की पात्र परंपराएं प्रचलित थी, जिनमें से कुछ का आविर्भाव जोरवे के साथ साथ दिखलाई पड़ता है। कुछ पात्र परंपराएं पहले से ही अस्तित्व में थी, जिन्हें जोरवे संस्कृति के लोगों ने ग्रहण कर लिया था। इस संस्कृति के परवर्ती चरण में कुछ ऐसी पात्र परंपराएं दृष्टिगत होती हैं जो इस संस्कृति की पात्र परंपराएं न होकर किसी अन्य संस्कृति से संबंधित होती हैं। जो इस संस्कृति की पात्र परंपराएं न होकर किसी अन्य संस्कृति से संबंधित थी, जोरवे संस्कृति के लोगों ने इन पात्र परंपराओं को अपना लिया था। वे पात्र परंपराएं जो जोरवे संस्कृति के पहले ही अस्तित्व में आ चुकी थी, उनमें से मालवा पात्र परंपरा और दुधिया स्लिप वाली पात्र परंपरा टीम स्लिप्ड वेयर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मालवा पात्र परंपरा मुख्यतः मालवा संस्कृति से संबंधित है, जिसके विषय में सर्वप्रथम जानकारी नौदा टोली के उत्खनन से हुई थी, लेकिन इसका विस्तार डिस्ट्रीब्यूशन पश्चिमी महाराष्ट्र प्रांत में दिखलाई पड़ता है। पृष्ठ संख्या 473, रेखा चित्र 14, निवासा, जोरवे मृदभांड, सौजन्य, सांकलिया 1974। इस क्षेत्र के प्रकाश दायमाबाद चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव के उत्खननों से जोरवे संस्कृति के निचले स्तरों से मालवा पात्र परंपरा उपलब्ध हुई। यह सुविदित है कि मालवा पात्र परंपरा के बर्तन हल्के लाल रंग के मिलते हैं, जिनके ऊपर काले या सलेटी रंग के चित्रण किए गए हैं। दुधिया स्लिप वाले मृदभांड चंदौली से प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह मृदभांड परंपरा घटिया किस्म की मालूम पड़ती है। मालवा पात्र परंपरा का प्रभाव दुधिया मृदभांड पात्र परंपरा के बर्तनों पृष्ठ संख्या 473 के प्रकार तथा चित्रण अभिप्रायों आदि पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तथापि इन दोनों पात्र परंपराओं के न मिलने पर भी जोरवे संस्कृति के स्वरूप पर कोई विशेष अंतर न पड़ता। ये दोनों पात्र परंपराएं संख्या में कम होने के साथ साथ इस संस्कृति के निचले स्तरों से ही प्राप्त होती हैं। इन्हें जोरवे संस्कृति के निर्णायक लक्षणों में अभिहित नहीं किया जा सकता है। चित्र 15 निवासा टोटीदार जोरवे मृदभांड एवं कटोरा सौजन्य संकलिया 1974। जिस पात्र परंपरा के बिना जोरवे संस्कृति आसानी से नहीं पहचानी जा सकती है, वह जोरवे पात्र परंपरा है। इस पात्र परंपरा के अपने विशिष्ट पात्र प्रकार, चित्रण अभिप्राय और निर्माण की एक विशिष्ट तकनीक है। पात्रों के ऊपर लाल रंग का प्रलेप मिलता है। कभी कभी बर्तनों के ऊपर घिसकर चमकाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। पात्रों का निर्माण अच्छी प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से किया जाता था, पृष्ठ संख्या 475। तथापि इसकी मिट्टी में बालू का अच्छा खासा प्रतिशत दिखलाई पड़ता है। बर्तन पतली गढ़न के हैं। अधिकांश पात्र अच्छी तरह से पके हुए हैं, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि इन बर्तनों को पकाने के लिए एक खास तरह के आवे का निर्माण किया जाता था। यही नहीं, इस संस्कृति के कुंभकारों को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी कि बर्तनों को अच्छी तरह से पकाने के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होगी। बर्तन प्रायः चाक पर बने हुए हैं, लेकिन उनके कुछ हिस्सों जैसे टोटी आदि को हाथ से बनाया जाता था। इस पात्र परंपरा में कई तरह के पात्र प्रकार मिलते हैं, जिनमें टोटीदार बर्तन, कोखदार कटोरे, छोटी या बड़ी गर्दन वाले बर्तन, तसले, गहरे कटोरे आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त बड़े बड़े मटकों तथा घड़ों आदि की भी गणना की जा सकती है। जोरवे के पात्रों में थालियां अथवा तस्तरियां प्राप्त नहीं हुई हैं। जोरवे पात्र परंपरा में कभी कभी एक ऐसी साधारण तस्तरी भी दृष्टिगत होती है, जिनका साधा आधार बहुत छोटा है। इस तरह के पात्र निवासा चंदौली सोनगांव से भी उपलब्ध हुए हैं। मालवा संस्कृति के विशिष्ट साधार कटोरे, कप ऑन स्टैंड जोरवे पात्र प्रकारों में नहीं दिखलाई पड़ते हैं। कतिपय ऐसे पात्र दिखलाई पड़ते हैं जिनका संबंध दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से है। इस तरह के पात्रों में भूरे रंग के अंत्येष्टि कलश विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लाल रंग की पात्र परंपरा में हाणी तथा गोल बर्तन के बड़े ढक्कन भी जोरवे संस्कृति में ठीक उसी तरह उपलब्ध होते हैं जैसे दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति में मिलते हैं। पेंदी में छेददार कटोरे तथा छोटे छोटे पाए लेक्स वाले पात्र भी जोरवे संस्कृति में मिलते हैं, जिनके समरूप भी दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति में खोजे जा सकते हैं। जोरवे पात्रों की निष्प्रभ लाल सतह पर काले रंग में चित्रण सजोए गए हैं। ये चित्रण अभिप्राय आसानी से मिटाए नहीं जा सकते हैं। इस आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि बर्तनों को पकाने के पहले ही चित्रण अभिप्राय सजोए गए थे। चित्रण अभिप्रायों के अवलोकन से यह पता चलता है कि इस संस्कृति के लोगों का झुकाव रैखिक एवं ज्यामितीय आकृतियों की ओर अधिक था। अधिकांश चित्रण प्राय पड़ी रेखाओं के माध्यम से किए गए हैं। चतुर्भुज टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं तथा त्रिभुज प्रमुख ज्यामितीय अलंकरण हैं। वनस्पति और फूल पत्ती भी दिखलाई पड़ती है, परंतु इनकी संख्या बहुत कम है। जानवरों का चित्रण भी मिलता है। ऐसे चित्रण अधिकतर निवासा से ही मिले हैं। चित्रित जानवरों में बारहसिंघा, कुत्ता आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उत्तर जोरवे चरण के पात्र प्रकार प्रौढ़ जोरवे की तरह के हैं, लेकिन चित्रण अभिप्रायों में कमी दिखलाई पड़ती है। इस स्तर से कृष्ण लोहित पात्र खंड भी मिलने लगते हैं, जिनसे इंगित होता है कि इस चरण में जोरवे संस्कृति के लोग दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक संस्कृति के संपर्क में आए। पृष्ठ संख्या 476। औजार, उपकरण तथा अन्य पुरानिधियां। जोरवे संस्कृति के लोग तांबे के औजारों तथा उपकरणों के प्रयोग से परिचित थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम मिलती है। ताम्र उपकरणों में कुल्हाड़ियों, चाकू के फलकों, सुइयों, चूड़ियों, मनकों तथा अंजन शलाकाओं की गणना की जा सकती है। चित्र सत्र, दायमाबाद, गैंडा, सौजन्य, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई। एक किसान को दायमाबाद के टीले पर स्थित एक पेड़ की जड़ खोदते समय एक गैंडा, एक हाथी, एक भैंसा तथा एक रथ जिसमें दो बैल जुटे हुए हैं एवं खड़ी मुद्रा में एक व्यक्ति सवार है मिले हैं। इनके नीचे लगभग 1.20 मीटर मोटा जोरवे संस्कृति का पुरातात्विक जमाव था। ये सभी खिलौने तांबे के बने हैं। इनको चित्र 18, दायमाबाद, हाथी, सौजन्य, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई। पृष्ठ संख्या 477। चित्र 19, दायमाबाद, भैंसा, सौजन्य, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई। सांचे में ढालकर ठोस आकार में बनाया गया है। इन चारों का वजन लगभग 60 किलोग्राम है। इन खिलौनों के तांबे में मिलावट नहीं है एवं आर्सेनिक की मात्रा मात्र 1% है। चित्र 20, दायमाबाद, सारथी युक्त रथ, सौजन्य, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई। जोरवे संस्कृति से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों से लघु पाषाण उपकरण बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। दायमाबाद एवं इनाम गांव के उत्खनन से इस तरह के उपकरण प्रायः प्रत्येक घर से मिले हैं। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि हर परिवार के लोग इनका निर्माण और प्रयोग करते थे। पृष्ठ संख्या 478, रेखाचित्र 21, ताम्र उपकरण, सौजन्य सांकलिया, 1974। प्रकाश, दायमाबाद, चंदौली तथा इनाम गांव के जोरवे संस्कृति के स्तरों से कतिपय मानव एवं पशु मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनाम गांव से प्राप्त स्त्री तथा वृषभ की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अनुमान किया गया है कि स्त्री की मृण मूर्ति मातृ देवी की है और वृषभ उसका वाहन है। दोनों की पूजा अविच्छिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। सिलखड़ी, तांबड़ा, पत्थर, पकी मिट्टी, ताम्र तथा सोने के बने हुए मनके प्राप्त हुए हैं। निवासा में एक बच्चे के कंकाल के गले में ताम्र के बने हुए मनके प्राप्त हुए हैं। हार पड़ा हुआ मिला है। मकान। जोरवे संस्कृति के लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करते थे। यह बहुत स्वाभाविक था कि ये लोग अपने रहने के लिए मकानों का निर्माण मिट्टी से करते थे। इनके मकान प्रायः चौकोर होते थे। इनाम गांव के उत्खनन से अनेक मकान प्रकाश में आए हैं। मकानों की दीवारों के कोने गोल बना दिए जाते थे। मकानों के छप्परों के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। मिट्टी की दीवारें और घास फूस का छाजन होता था। कुछ मकानों के बीच बीच आंगन के भी साक्ष्य मिले हैं। मकानों के अंदर तरह तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनमें से कुछ का प्रयोजन स्पष्टतः अनाज भंडारण से तथा कुछ का प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाले बर्तनों से था। बर्तनों के अतिरिक्त इनके मकानों में पत्थर के सील तथा लोड़े भी मिले हैं। अनुमान किया जाता है कि खाद्यान्नों को सील बट्टों में पीसकर प्रयोग में लाया जाता था। पृष्ठ संख्या 479। इनाम गांव के उत्खनन से जोरवे संस्कृति का एक ऐसा पक्ष उद्घाटित हुआ है जिसे हम उत्तरकालीन जोरवे संस्कृति से जोड़ सकते हैं। उत्तरकालीन जोरवे संस्कृति के इस स्तर से संबंधित मकानों को देखने से यह पता चलता है कि अब लोगों ने चौकोर मकान बनाने छोड़ दिए थे और इन लोगों ने अपने मकान गोल आकार के बनाने प्रारंभ कर दिए थे। कृषि तथा पशुपालन। आहाड़ और मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के लोगों की भी भांति जोरवे संस्कृति के लोग कृषि तथा पशुपालन करते थे। निवासा के उत्खनन से इस बात के संकेत मिले हैं कि ये लोग संभवतः कपास की खेती करते थे। इनाम गांव के उत्खनन से जौ, गेहूं, मटर, मसूर, मूंग या उड़द की खेती के साक्ष्य मिले हैं। झरबेर, जामुन, जंगली ताड़ तथा बहेड़ा की गुठलियां भी इनाम गांव से प्राप्त हुई है। पालतू पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी और कुत्ते प्रमुख पशु थे। इनाम गांव के एक पात्र पर बैलगाड़ी में जुते हुए दो बैलों का चित्रण मिलता है। इससे स्पष्ट है कि बैल भारवाही प्रमुख पालतू पशु थे, जंगली पशुओं का शिकार भी करते थे। अंत्येष्टि संस्कार। जोरवे संस्कृति के निवासा दायमाबाद, कौठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों से जो मानव कंकाल मिले हैं वे अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हैं। तुलजापुर गढ़ी तथा वाडकी से जो कंकाल मिले हैं वो बच्चों के हैं। अपेगांव से एक वयस्क का जबड़ा मिला है। टेकवाड़ा से भी मानव कंकाल मिले हैं। इनामगांव से 176, कौठे से 37 तथा दायमाबाद से 5 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। प्रकाश, सावलदा, बहाल, सोनेगांव, जोरवे तथा नासिक के सीमित पैमाने पर शैक्षिक उत्खनन हुए थे। इन उपर्युक्त पुरास्थलों से अभी तक मानव कंकाल नहीं मिले हैं। अस्थि पंजर मकानों के फर्श के नीचे दफनाए हुए मिले हैं। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की तरह जोरवे संस्कृति में मुर्दों को आवासक क्षेत्र से बाहर दफनाने की परंपरा नहीं थी। जोरवे संस्कृति की यह विशिष्टता नवपाषाणिक तथा बृहत पाषाणिक संस्कृतियों से अनुप्राणित प्रतीत होती है। वयस्क लोगों को कब्रों में दफनाया जाता था। कब्रों में सिर प्रायः उत्तर दिशा की ओर मिलते हैं। मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण मिलते हैं। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिनमें कंकालों की टांगे नहीं मिली हैं। दफनाने के पहले ही संभवतः टांगे अलग कर दी जाती थी। इस कार्य से पीछे क्या भावना रही होगी? कुछ विद्वानों का अनुमान है कि शायद इस परंपरा के पीछे जुर्वे संस्कृति के लोगों को का अपने मृतकों के प्रति विशेष लगाव था। उन्हें इस बात का भय था कि मुर्दे कहीं भाग न जाए। बच्चों को दफनाने के लिए बड़े आकार के अंत्येष्टि कलश उपयोग में लाए जाते थे। इस कार्य के लिए लाल अथवा धूसर रंग के बर्तन प्रयोग किए जाते थे। पृष्ठ संख्या 480, चित्र 22, इनामगांव, अंत्येष्टि कलश, सौजन्य धवलीकर, 1988। एक बच्चे के शव को भरने के लिए ज्यादातर दो अंत्येष्टि कलश काम में लाए जाते थे। इन कलशों के आपस में मुख से मुख मिलाकर पड़े बल हॉरिजॉन्टल गड्ढे में लिटाकर दफना दिए जाते थे। रेखाचित्र 23, निवासा, अंत्येष्टि कलश समाधि, सौजन्य सांकलिया, 1974। कभी कभी एक अंत्येष्टि कलश भी इस काम में लाया जाता था। अंत्येष्टि कलशों में बच्चों के सिर उत्तर को तथा पैर दक्षिण दिशा की ओर करके दफनाए जाते थे। अंत्येष्टि कलश के साथ कटोरे तथा टोटीदार बर्तन भी गड्ढों में दफनाए हुए मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 481, कालानुक्रम। जोरवे की ताम्रपाषाण संस्कृति के तिथि क्रम के संबंध में हमें सापेक्ष तथा निरपेक्ष तिथियां प्राप्त हैं। स्तर विन्यास क्रम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जोरवे संस्कृति मालवा संस्कृति के बाद की है, क्योंकि प्रकाश, दायमाबाद तथा इनाम गांव में जोरवे मालवा संस्कृति के स्तरों के ऊपर है। चंदौली, सोनगांव तथा बहाल में भी मालवा संस्कृति से संबंधित पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति के नीचे के स्तरों से उपलब्ध होती है। नौदा टोली में जोरवे पात्र परंपरा मालवा संस्कृति के तीसरे चरण से मिलने लगती है। ये सभी संवेत साक्ष्य इस ओर इंगित करते हैं कि जोरवे संस्कृति का विकास मालवा संस्कृति के बाद की घटना है। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जब जोरवे संस्कृति अस्तित्व में आई तब तक मालवा संस्कृति अतीत की वस्तु बन चुकी थी। इसके विपरीत हमें इस बात के संकेत मिलते हैं कि शताब्दियों तक दोनों संस्कृतियां साथ साथ चलती रहीं। पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि जोरवे संस्कृति आरंभिक ऐतिहासिक युगीन संस्कृति से पहले की है, क्योंकि नासिक, निवासा आदि पुरास्थलों पर जोरवे संस्कृति के स्तरों के ऊपर 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभिक ऐतिहासिक युगीन पुरावशेष मिलते हैं। यद्यपि इन पुरास्थलों के उत्खननकर्ताओं ने प्रारंभ में यह मत व्यक्त किया था कि जोरवे संस्कृति के अंतिम चरण और आरंभिक ऐतिहासिक युगीन संस्कृति के प्रारंभिक चरण के बीच समय का कोई अंतराल नहीं था, लेकिन इन पुरास्थलों से मिलने वाली रेडियो कार्बन तिथियों से इस धारणा की पुष्टि नहीं होती है। जोरवे संस्कृति से संबंधित चंदौली, सोनगांव, निवासा तथा इनाम गांव से कतिपय रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर इस संस्कृति का समय 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। एसडी सांकलिया और एमके धौलीकर इनामगांव के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आलोक में जोरवेद संस्कृति के अंतिम चरण को 700 ईसा पूर्व में रखने के पक्ष में है। वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर जोरवेद संस्कृति का अंत हो गया। जोरवेद संस्कृति के विभिन्न अवयवों को लेकर जो छानबीन की गई है उससे यह पता चलता है कि इस संस्कृति के निर्माण में दो विभिन्न संस्कृतियों के तत्व दिखलाई पड़ते हैं। जोरवेद संस्कृति की विशिष्ट पात्र परंपरा मालवा पात्र परंपरा से अनुप्राणित प्रतीत होती है। मालवा पात्र परंपरा की ही भांति जोरवे पात्र परंपरा में भी लाल धरातल के ऊपर काले रंग में चित्रण अभिप्राय मिलते हैं। कुछ चित्रण अभिप्राय दोनों संस्कृतियों में समान भी हैं। यही बात कुछ पात्र प्रकारों के संबंध में भी कही जा सकती है। यह दूसरी बात है कि मालवा तथा जोरवे संस्कृतियों की विशिष्ट पात्र परंपराएं परस्पर नितांत भिन्न हैं। जोरवे संस्कृति के स्तरों से धूसर अथवा सलेटी रंग के पात्र भी मिले हैं। यह पात्र परंपरा दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति की अपनी परंपरा पृष्ठ संख्या 482 है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति के धूसर पात्र तथा जोरवे के धूसर पात्र प्रकार लगभग समान हैं। जोरवे के अंत्येष्टि संस्कार की परंपरा पर भी दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है। जोरवे संस्कृति के संदर्भ में उपर्युक्त सभी साक्ष्य एक मिलीजुली संस्कृति का रूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जोरवे संस्कृति की अपनी कोई मौलिकता नहीं थी। जोरवे संस्कृति के पात्र प्रकार चित्रण अभिप्राय मालवा संस्कृति और दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति से सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं। विभिन्न स्रोतों से ग्रहण किए गए सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करने के बाद जोरवे संस्कृति के निर्माताओं ने इसको एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया। एसडी सांकलिया ने पश्चिमी ईरान और पश्चिमी एशिया के कुछ तत्वों के साथ जोरवे संस्कृति के उपादानों के सादृश्य की ओर संकेत किया था। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अधिक संभावना इसी बात की है कि जोरवे संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में उद्भूत हुई और यह इसी क्षेत्र की उपज है।